शांति। मैं हमेशा ही जो बहन मेरा परिचय देती है उनको कहता हूं कि ये सारी बातें तो हर एक के जीवन में आती है, संस्कार संबंध ये सब बातें आती है। मुख्य बात तो बाबा जो दो शब्दों में सिखाते हैं कि मैं आत्मा हूं और परमात्मा की संतान हूं, यही सबसे बड़े में बड़ा परिचय है। बाकी सब बातें तो होती रहती है, आती रहती है, जाती रहती है। हमारे ही आप देखिए, हमारे जो पूर्वजों का जो चित्र बना हुआ है, हाँ 30 जितने करीब उसमें पूर्वज है, उनका भी जीवन किस प्रकार का था है? और जिन्होंने पुरुषार्थ कर करके यह विश्वविद्यालय का 75 वर्ष का कार्यविधि के अंदर और कार्यकाल के अंदर यज्ञ को इतना आगे बढ़ाया। तो इस प्रकार से हर एक के पास अपना अपना कोई न कोई साधन है, कोई न कोई पुरुषार्थ है और कोई न कोई इस प्रकार की विधि है। दादी जानकी देखो, दादी प्रकाशमणि देखो, मातेश्वरी देखो, ये सबके जीवन में कोई न कोई था। और क्या हुआ, इन सब ने जितने भी हमारे पूर्वज हो गए हैं, आज तक 30-32 जितने भी हो गए हैं, वो सब हमको एक बात से सिखाते ही रहते हैं कि हम सबको उपराम बनना। सिर्फ बाबा नहीं, ब्रह्मा बाबा नहीं, सिर्फ मातेश्वरी नहीं, परंतु सभी जितने भी पूर्वज हो गए उन सब ने हमको यही सिखाया हुआ है कि हम सबको उपराम होना ही है। क्योंकि दुनिया के अंदर भी देखा जाता है किसी के साथ कुछ नहीं आता है। शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य ने स्तोत्र में लिखा हुआ है, धनानी भूमो पशुवस्य गोष्ठे भार्या गृहे जन श्मशान है। मतलब धन जो यहाँ ही रहता है, भूमि भी यहाँ ही रहती है, पशु पंखी आदि जो भी हमारे होते हैं वो भी यहाँ रहते हैं, पत्नी जो होती है वो भी घर के आंगन तक आती है और शमशान तक जो है हमारे रिश्तेदार आते हैं। परंतु उसके बाद क्या, आप जानते हैं सिकंदर जो है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इन्होंने भी जब उन्होंने शरीर छोड़ा तब कहा था कि मेरा दो हाथ जो है बाहर रखिए, क्योंकि मैं खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा हूं। मैंने इतना साम्राज्य बढ़ाया बनाया, इतने लाखों लोगों की हिंसा की आदि आदि जो भी किया, वो सब कुछ यहाँ ही रह जाता है। अगर ये बात सबसे सीख ले तो क्या हो जाएगा, हमारे यज्ञ के अंदर भी हमारे ये पूर्वजों ने सिखाया हाँ कि क्या है, उपराम रहो, मेरा जिज्ञासु, मेरी हदे, मेरा सेंटर आदि आदि जिसके पीछे मेरा कहते रहते थे, वो सब यहाँ की यहाँ रहता है। कोई भी जिज्ञासु ने अपने पूर्वजों के अंदर जो भी उनके साथी जो थे उनके प्रति जीवदान नहीं दिया, कुछ नहीं किया, जैसे दुनिया में होता है। हमारे पास दो बैल थे यज्ञ में, दो बैल थे। पहले तो जो शुरू में आते होंगे उनको मालूम होगा, 61 में हम तो पहली बार आए थे, तो उसके अंदर दो बैलगाड़ी थी। उस बैलगाड़ी में सामान आता था और हम पैदल से बस स्टैंड से पहुंचते थे। वो बैलगाड़ी के अंदर का जो दो बैल थे उसमें से एक ने शरीर छोड़ दिया तो दूसरा जो था उन्होंने अनशन का उपवास करना शुरू कर दिया। बहुत कुछ उसके पीछे मेहनत किया, ब्रह्मा बाबा खुद भी गए उसको खाना खिलाने के लिए, परंतु उसने खाना खाया ही नहीं। 5-7 दिन के बाद उन्होंने ही अपने साथी की याद में अपना जीवन जो है उसका त्याग कर दिया। तो एक बैल के अंदर भी इस प्रकार की आपस में प्रेम प्यार की स्नेह की दोरी से बंधे हुए रहते हैं। हम मनुष्य हैं, परंतु हम मनुष्यों को ये स्नेह की दोरी जो भी है उसको साथ में कहाँ तक रखनी चाहिए, कहाँ तक छोड़नी चाहिए, ये सीखने की बात है, नहीं तो क्या हो जाता है। हम जिसके पीछे मरते हैं, जिसके लिए क्या क्या किया है, जिसने कही उन्हें धन का प्राप्ति करने का मेहनत किया होगा, करोड़पति बने, अब्जोपति बने, कईयों ने जमीन आदि भी किया, कितना साम्राज्य बनाया, औक्षहणी सेनाओं का कारोबार किया सृष्टि चक्र के अंदर, इनके भी नाम हो गए। कईयों ने अपने साम्राज्य भी बनाया, जैसे मुगल साम्राज्य है, मराठा साम्राज्य है, ये सब साम्राज्य बनते गए, परंतु क्या हो गया, काल की अवधि में वो सब लपेट करके खत्म हो गए। और इसके कारण क्या हुआ, उसकी यादें रह गई, उसकी याद रहेगी, उसका इतिहास रह गया, परंतु साथ में किसी का कुछ भी नहीं चलता है। तो इस प्रकार से फंडामेंटली यही है उपराम अवस्था का, कि हमारे साथ जो हम क्या कर साथ में ले जाने वाले उसके प्रति विशेष ध्यान रखें, कि हमारे साथ में हमारे किए हुए सत्कर्म जो है, हमारा पुण्य जो है, हमने जो अच्छाई के काम किए हुए हैं, जो हमारी जो यादगार बातें जो बनी हुई है, वो सब हमारे साथ में चलने वाली है। वो है सच्ची कमाई। और उस सच्ची कमाई के प्रति अगर हम लक्ष्य रखेंगे तो क्या हो जाएगा, हम सब लौकिक दुनिया के कारोबार, लौकिक दुनिया के संबंध, लौकिक दुनिया की धन संपत्ति, धन दुनिया आदि, मकानों आदि 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 जो भी कहो, उन सब से हम न्यारा हो सकता है। तो इसलिए न्यारापन बनना और उसके आधार पर उपराम बनना बहुत कठिन बात नहीं है। ये सारी हमारी मन की स्थिति की बात है, हमारी बुद्धि की स्थिति की बात है। हम अपने मन और बुद्धि से न्यारा बन सकते हैं, उपराम बन सकते हैं। ब्रह्मा बाबा के बारे में मैं आपको बताऊं कि जब 1965 में डॉक्टर पे मास्टर ने मातेश्वरी जी के बारे में हमारी बहन को बता दिया कि अभी इनका जीवन जो है, लाइफ स्पैन जो है, अभी उनका जो कैंसर जो है उनके लंग्स की ओर तीव्र गति से जा रहा है, तो इसके कारण उन्होंने कहा, हमारी बहन ने उनसे पूछा, व्हाट इज द लाइफ स्पैन एंड लाइफ स्पैन कितना रहा हुआ होगा, तो कहा 3-4 मास। तो फिर उस दिन रात को जब 19 तारीख को रात को हमारी बहन घर में आई, मैं भी ऑफिस से आया, तो मैंने देखा कि हमारी बहन का मुख जो है थोड़ा मुरझाया हुआ था। तो मैंने बाद में गैलरी में जाकर के उनको लेकर जाकर पूछा क्या हुआ, तो इन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मातेश्वरी जी के बारे में बताया गया है। तो मुझे ये बात सहन नहीं हुई। हम लोग तो तब तक तो यही समझते थे कि मातेश्वरी जो है ये विश्वविद्यालय का, विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा, तब तक हम विश्व का विद्यालय का कारोबार का सेनापति के रूप में, हम माया के सामने युद्ध के सेनापति के रूप में हमारे साथ में होंगे। और जब ये हमने सुना तो हमने सहन नहीं किया। हम दूसरे दिन जो है शील दादी के घर पे गया। शील दादी हमारी मैसेंजर सिस्टर थी, संदेशी थी। उनको कहा कि हमको बाबा से बात करना है, तो इन्होंने कहा कि आप बता दो ना, मैं बाबा से संदेश लेकर के आऊंगी। तो मैंने कहा नहीं, ये बात ऐसी है जो आपको भी बता नहीं सकता हूँ और मुझे डायरेक्ट बात करनी है। तो बाबा आए, मैंने काफी 2 घंटे तक डिबेट किया, क्योंकि मैं उपराम नहीं हो सकता था मातेश्वरी जी से। हमने समझा था कि क्योंकि मातेश्वरी जी हमारे घर में सब मिलकर के टोटली 18 मास रहे, तो इसके कारण क्या हुआ था कि स्नेह की रग, सम्मान की रग, जो भी कहो आप, संबंध की रग वो लग गई थी। 2 घंटे तक नहीं हुआ, माना नहीं बाबा ने। बाबा ने कहा जो ड्रामा में है वो होना ही है, बाबा भी ड्रामा से हम ऊपर नहीं जा सकता है। और फिर बाबा ने हमको कहा कि मातेश्वरी एक पत्र लिखो बाबा के नाम पर, और उसमें लिखो कि डॉक्टर ने कल ये कहा हुआ है कि मातेश्वरी जी का जीवन काल जो है अभी अगले 3-4 मास के अंदर ही समाप्त हो जाएगा, और कहा कि इसको लिख करके एक लिफाफे में डाल करके रात को मातेश्वरी जी को बताना। और फिर मातेश्वरी जी को पढ़ा करके दूसरे दिन सुबह वो कागज जो है आबू में पोस्ट कर देना। तो मैंने देखा, मातेश्वरी जी का भी उपराम अवस्था देखी, जब आप सामने डॉक्टर का सर्टिफिकेट, डॉक्टर का वो रिजल्ट आ जाता है कि भी मेरी जीवन यात्रा अभी 3-4 मास में समाप्त होने वाली है, तो भी मातेश्वरी जी मुख से मैंने देखा, मैं मार्क कर रहा था मातेश्वरी जी का मुख से, क्योंकि मेरा जीवन तो मेरा तो ऐसा दिल धक धक होता था, पर तो मातेश्वरी जी ने ऐसा ही खाली कहा ड्रामा जो भी होगा हमें मंजूर है। इस प्रकार से कहकर के एकदम उपराम अवस्था अपनी धारण कर लिया। और यही पत्र जो है हमने, बाबा ने कहा था कि एक लिफाफे में डाल करके उसके अंदर उसको, और दूसरा लिफाफा डाल करके उसमें लिख देना के केवल ब्रह्मा बाबा के लिए। तो ब्रह्मा बाबा के लिए वो पत्र पहुंच गया। मैंने संतरी दादी को फोन करके बोला था कि बाबा के पास ये पत्र आएगा और बाबा की क्या अवस्था रहती है, बाबा के क्या विचार रहते हैं वो बता रहा। मतलब यज्ञ के साथी बनकर के यज्ञ का कारोबार में शुरुआत से ही साथी रही हुई ऐसी हमारी मातेश्वरी जी के जीवन के बारे में ये समाचार पढ़ करके भी बाबा ने यही कहा ड्रामा जो भी होगा ड्रामा, ऐसा कह करके उस लिफाफा के अंदर पत्र डाल करके पत्र मैंने हम लिखा था कि ये पत्र भर करके फाड़ के फेंक देना। तो उन्होंने फेंक दिया और संतरी दादी को मैंने फोन करके पूछा कि क्या हुआ बाबा का रिजल्ट। तो बाबा ने बताया कि बाबा का तो अटल अखल अटल निश्चय जो ड्रामा में है उसके कारण इन्होंने यही कहा कि जो भी ड्रामा में है और इस प्रकार से बाबा को कोई भी प्रकार की उनके मन के ऊपर कोई भी प्रकार की दुख ग्लानी आदि किसी भी प्रकार की छाया नहीं आई। तो वो भी हमने देखा कि इस प्रकार से बाबा मम्मा के जीवन में भी इस प्रकार की जो भी बातें होती रहती है। जब मातेश्वरी जी को भी डॉक्टर प्रिय मास्टर ने बताया कि आपको कैंसर है तो भी हमने देखा हम बैठे थे, हमने कहा डॉक्टर को कि आप कैंसर है कैसे कह सकते हो। ये हमारी संस्था की आदरणीय सबसे बड़ी में बड़ी बहन जी हैं और उनके बारे में बायोप्सी किए बिना आप कैसे कह सकते हो। मैं देख रहा था मातेश्वरी जी के सामने भी उनके मुख के ऊपर क्या होता है, उनके मुख पर कोई भी प्रकार का वो भाव नहीं आता था। परंतु मेरे मन में आया और मैंने डॉक्टर को क्वेश्चन किया तो डॉक्टर ने कहा कि मेरे 40 वर्ष की कैंसर की दुनिया का अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि इस प्रकार की जो भी होती है गांठ होती है जो भी होता है डेवलपमेंट होती है वो कैंसरस होती है। तो इस प्रकार से जब पहले भी सुना बाद में भी सुना और अंत में भी सुना और मातेश्वरी जी के जीवन काल के समाप्ति भी हो गई उसके बाद भी हम सब यहाँ आए और आकर के अग्नि संस्कार का कारोबार हमने किया और के बाद रात को शाम को बाबा के पास कमरे में गए तो बाबा के हमने देखा कि एकदम मतलब निश्चिंत हो गए थे और हम लोग शांत हो गए थे, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते थे। तो बाबा ने सीधा ही हम सब जो पांच जन गए थे उन सबको सीधा ही सवाल पूछा कि क्या परेशान नहीं करके आए हुए हो, अभी तो अपनी मातेश्वरी गई उसको क्या हो गया, वो अपने कारोबार के लिए आगे चली गई। तो इस प्रकार से बाबा के जीवन के अंदर ये भी देखा। दादा विश्व किशोर ने भी बॉम्बे में शरीर छोड़ा, जाने के पहले यहां हम आए हुए थे ऑपरेशन के लिए जाने के पहले, तभी भी बाबा ने बहुत हंसते मुख से विदाई दिया। बाबा जानते थे और दादा विश्व किशोर ये जानते थे कि विश्व किशोर दादा अभी दोबारा यज्ञ कारोबार के लिए वापस पांडव भवन नहीं आने वाले। तो भी उनके मुख पर कुछ भी नहीं था, खाली एक ही बात बाबा ने कही कि अभी तक बच्चे का दादा विश्व किशोर का कोई भी फोटोग्राफ यज्ञ में कारोबार में या किधर भी रखा हुआ नहीं है। तो चंद्रदास दादा को ऊपर से बुलाया वहां पर और वहां से कैमरा लेकर के बुला करके वो जो कार जो थी जिसमें हम बैठ करके नीचे आने वाले थे उसके कार के आगे दादा विश्व किशोर पीछे बाबा और मैं खड़ा रहा और बाबा ने एक यादगार के रूप में एक फोटो रखवाया और कुछ भी नहीं किया। बाद में ऑपरेशन भी हुआ, ऑपरेशन के समय बाद में भी दादा को डॉक्टर्स लोग नींद का इंजेक्शन नहीं देते थे और उसके कारण नींद नहीं आती थी। बाबा ने जब बाबा को जब मालूम पड़ा तो बाबा ने सारी रात जा करके योगदान भी दिया, वो भी किया, अपना जो भी कर्तव्य जो था ड्यूटी थी वो पूरी बजाई। परंतु उसके बाद भी दादा का शरीर छूट गया तो हम लोगों ने बॉम्बे में नक्की किया कि दादा का बॉडी जो है उसको हम बॉम्बे से डाकोटा एरोप्लेन उस जमाने में थे, अभी इस सब नए जमाने के आए उस जमाने में डाकोटा एरोप्लेन थे उसके लिए उसकी चार्टर फ्लाइट करके बॉम्बे से अहमदाबाद और अहमदाबाद से फिर बॉडी को आबू लेके आने का प्रोग्राम बनाया, सब कुछ फिक्स कर दिया। हमने ब्रह्मा बाबा को फोन किया, उन्होंने कहा बाबा हम बॉडी को इस प्रकार से लेके आते हैं। तो बाबा ने सीधा ही कहा बच्चे अब क्या करने का है, उस बॉडी के साथ हम क्या कर सकते हैं, हमारा तो कनेक्शन उस आत्मा के साथ था और आत्मा तो शरीर छोड़ के चली गई, अब हम उस आत्मा को उस शरीर को हम क्या करेंगे, उस शरीर का अग्नि संस्कार वहां ही कर दो। हमने बाबा को पूछा अग्नि संस्कार में अग्निदान कौन देगा, तो बाबा ने कहा कुल कुमार का बच्ची है उधर, हाँ तो उनके द्वारा कार्य कराइए। तो उस प्रकार से उनके द्वारा कार्य कराया, परंतु इतना मतलब उपराम हो गए जिसके साथ यज्ञ की स्थापना हुई और जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा तब तक पूरा ही संबंध था बाबा का, राइट हैंड बन करके यज्ञ के हर कार्य में दादा विश्व किशोर मददगार थे। वो जब तक शरीर में थे उनकी आत्मा तब तक पूरा ही संबंध रखा, सब कुछ किया, जैसे ही आत्मा शरीर छोड़कर चली गई और बाबा एक सेकंड में उपराम हो गए और कहा बच्चे क्या करने का है शरीर को, शरीर का अग्नि संस्कार वहां ही कर दो। बाबा के लौकिक युगल जो है यशोदा माता, उसका भी 1961 में बॉम्बे में शरीर छूट गया। दुनिया में तो क्या करते हैं, दुनिया में तो समझते अरे मेरी लौकिक युगल का शरीर छूट गया, हमको जाना है जाना है जाना है, परंतु बाबा ने कुछ भी नहीं किया। बाबा ने नारायण को और हम सबको कहा कि बॉम्बे में अग्नि संस्कार कर दो। इस प्रकार से न्यारा होकर के रहे दुनिया में। आजकल आप जानते हैं जब फैमिली ट्रेडिशन के रूप में कारोबार चलता है, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को आगे रखा, बेटी ने फिर राजीव गांधी को रखा, आज उसके युगल ने काम कर रहे। मतलब वंश परंपरा का कारोबार दुनिया में 99% होता है। तो बाबा ने क्या किया, बाबा ने जब भी 1937 में पहली कमेटी बनाई, मातेश्वरी जी को उसका इंचार्ज बनाया, कितना रखा होगा। बाकी दादी निर्मल शांता आदि, ब्रिजेंद्र आदि भी बहुत अच्छे कैपेबल थे, परंतु जिसका भविष्य में जो पार्ट होगा उसके ही आधार पर उनको निमित्त बनाया और उसके आधार पर उनके द्वारा आगे काम चलाया। उसके बाद भी जब मातेश्वरी जी ने शरीर छोड़ा, वृत्त हो गए, तो उसके बाद भी संस्था का हेड के रूप में दादी प्रकाशमणि और दीदी मनमोहिनी इनको ही बनाया। उस प्रकार से इतने हद तक बाबा इन्हों से न्यारे रहते थे अपने परिवार से। आप सबको ताज्जुब होगा कि दादी निर्मल शांता ने एक बार अव्यक्त बाबा आए हुए थे ब्रह्मा बाबा के समय पर भी, तब भी कहा कि मुझे इनके परिवार में अगले कल्प में जन्म नहीं देना। क्यों नहीं देना, बाबा ने पूछा, तो कहा इतने हमसे न्यारे रहते, इतने हमसे उपराम रहते हैं, हम समझते हैं कि हमारा वो लौकिक पिता है, तो भी हम सबसे इतना न्यारा रहते हैं कि क्या करें हम। इसलिए कोई भी हमको एक्स्ट्रा एडवांटेज नहीं मिलता है कि हम उनके बच्चे हैं, सगे बच्चे हैं, लौकिक बच्चे हैं, उस प्रकार से न्यारा रह सकते हैं। जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त बाबा ने उनको पूछा कि आपको कितने बाप हैं, तब निर्मल शांता दादी ने बताया कि हम सब तो कहते हैं हमारे 3 बाप हैं, सब यही कहते हैं ना, लौकिक अलौकिक और परलौकिक। दादी निर्मल शांता ने कहा कि नहीं मेरे तो 4 बाप हैं। तो अव्यक्त बाप दादा ने उनसे पूछा कि 4 बाप कौन सा, तो कहा सतयुग में भी मैं इस बाप के घर में ही जन्म लेके आऊंगी, इसलिए सतयुग में भी मेरा ये बाप होगा। हम सब में किसी को भी ये नशा नहीं रहता है कि हमारा चौथा बाप या तो सतयुग में हमारा कौन बाप होगा। तो दादी निर्मल शांता ने ये कह दिया कि मेरा 4 बाप है, मैं इस बाप के घर में ही जन्म लूंगी। इस प्रकार का नशा भी होता है और इस प्रकार का कारोबार भी होता है, और इस प्रकार से बाबा उपराम भी रह सकते हैं कारोबार के अंदर। कारोबार करते मुरली आकर के सुना करके इसलिए अंदर जाते हैं और अंदर जाकर के सब बच्चे से मिलते हैं। 2 मिनट पहले ही मुरली चलाई हुई है, मुरली चलाने के बाद क्या होता है, थकान हो सकती है और भी हो सकता है, परंतु अंदर जाकर के सभी बच्चों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं और इस प्रकार से व्यवहार भी करते हैं, उपराम भी रह सकते हैं। दोनों बातें जो है, दोनों बीचों के बीच में बैलेंस रखना बहुत बड़ी बात होती है। एक बार आपको बताऊं, बॉम्बे के अंदर बीकन्स में ब्रह्मा बाबा आए हुए थे, तो गुरुवार के दिन भोग लगता था, तो कई लोग भाई लोग जो थे उनको जल्दी जाना पड़ता था, जल्दी जाते थे तो इसके कारण उनको भोग नहीं मिलता था, क्योंकि भोग लगे उसके बाद
सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश, आज है सब मोहताज, योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज।
ओम शांति। तो मैं आपको बता रहा था बॉम्बे के अंदर बीकन्स के अंदर ब्रह्मा बाबा आए थे और गुरुवार के दिन भोग लगता था, परंतु कई जो जल्दी चले जाते थे उनको भोग नहीं मिलता था, और कहीं शाम को आते थे उनको तो सुबह का शाम को रखते थे, परंतु दूसरे दिन सुबह जो आते थे मतलब 24 घंटे के बाद आते तो उनको नहीं मिलता था। तो इन्होंने ही बात बताई तो ब्रह्मा हवा तक पहुंच गई बात। तो बाबा ने दादी पुष्प शांता को पूछा कि बच्चों को भोग नहीं मिलता है, ये बात सही है? तो कहा हाँ ये सही है। तो क्यों ऐसा होता है? कहा पहले बाप को भोग नहीं लगाएंगे, संदेशी बनकर के संदेश वतन में नहीं जाएंगे, भोग नहीं लगेगा, तब तक हम जो पहले चले जाते उसको कैसे खिला सकते हैं। बाबा ने बहुत सुंदर एक सवाल पूछा, बहुत सुंदर, जिसका ये यज्ञ के अंदर मालूम पड़ता है कि परमात्मा का पिता के रूप में कर्तव्य कितना होता है। परमात्मा पिता के रूप में स्नेह भी देता है तो साथ साथ उपराम भी हो सकता है, इसका कितना सुंदर बैलेंस था कि बाबा ने दादी पुष्प संतों का ऐसा ही सवाल पूछा कि दुनिया में ऐसा कौन बाप होगा, दुनिया में ऐसा कौन बाप होगा जो कहे पहले मैं खाऊं उसके बाद मेरे बच्चे खाए, ऐसा कोई होगा? इसलिए बाबा ने कहा दुनिया में कोई ऐसा नहीं होता। और ही क्या होता है कि माँ बाप पेट पर पट्टी बांध करके भी अपने बच्चों का खाना पीने का ध्यान रखते हैं। तो बाबा दादी पुष्प संतों ने तो क्या किया जाए? तो बाबा ने कहा कि अलग अलग तो भोग लगाने का जितना सामान जो है अलग अलग करके रखो और जिन्हों को जल्दी जा रहा है उनको खिलाओ। इस प्रकार से इतना हद तक बच्चों के प्रति पूर्ण रूप में प्रेम प्यार आदि स्नेह दे सकते हैं। हमें तो जब 18 जनवरी के दिन विदाई का दिन आ गया तो क्या हो गया? कुछ भी संस्था का इतना यज्ञ का इतना बड़ा कारोबार है, सब कुछ ध्यान में होते हुए भी सबकी सब प्रकार की जिम्मेदारी अपने सिर पर होते हुए भी तीन दादियां थी, संदेशी दादी, दादी प्रकाशमणि और अपने संतरी दादी, तीन दादियां थी। तो उनका भी दादी पुष्प प्रकाशमणि के हाथ में हाथ रखते हुए और खटिया पर बैठे हुए कहा कि शायद मैं जा रहा हूं बाबा के पास, इतना बोल करके बाबा के पास चले गए। ये अवस्था अंतिम अवस्था तभी ऐसे हो सकती है। हाँ जो कहते हैं मुख में गंगा जल हो, मुख में गंगा जल हो, मुख से आवाज राम का निकले, इस प्रकार की जो है जब तन से आत्मा निकले तब क्या हो सकता है? वो दुनिया में आप लोगों ने भजन सुना हुआ होगा, परंतु बाबा के जीवन में हमने देखा वो प्रैक्टिकल में हो सका। कारण यही है, ऐसा नहीं है कि लास्ट मिनट पर उपराम अवस्था हो सकती है, उसके लिए पहले से ही पुरुषार्थ करना पड़ता है और उसका भी अभ्यास करना पड़ता है, तब अंतिम अवस्था हो सकती है। और इसलिए ही हमने ये आज का टॉपिक जो है वो बहनों ने मेरे को बताया कि आपने हमारी बड़ी बहनों की मीटिंग में कहा, बट्टी में कहा था कि उपराम अवस्था के बारे में चर्चा तो बहुत हो गई है। जब से बाबा ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए तब से उपराम अवस्था, मातेश्वरी जी भी अव्यक्त हो गए तब से अवस्था के बारे में, राजीव प्रकाशमणि ने भी जब वो अव्यक्त हो गए तो सुनते आए, उपराम अवस्था के ऊपर बहुत से क्लास सुन गए। परंतु प्रश्न ये है कि हमारी उपराम अवस्था हुई, औरों की उपराम अवस्था सुनने के बाद उसका मार्गदर्शन मिलता है वो बात सही है, परंतु इसके साथ साथ अपनी भी उपराम अवस्था हो सकती है और उसके लिए क्या करना चाहिए? रोज अपने योग के समय पर या तो रात को नींद के समय पर भी इस प्रकार की उपराम अवस्था का जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ करना चाहिए। क्योंकि नींद है ना, एक साइकोलॉजिस्ट ने कहा है नींद जो है वो मिनी डेथ है, अर्थात शरीर से उपराम नहीं हुए होंगे तब तक क्या होगा, नींद नहीं आएंगी, शरीर से उपराम अवस्था को धारण करेंगे उसके बाद ही नींद आ सकती है। तो उस नींद के समय पर कितनी मिनट पहले हम शरीर से न्यारे, कारोबार से न्यारे, दुनिया से न्यारे, व्यवहार से न्यारे, सब प्रकार की धन संपत्ति से न्यारे हो गए और कितने जल्दी हमको हमारी जीवन के अंदर नींद आती सकती है। तो इस प्रकार से ये व्यवहार में आना चाहिए। हम सुबह योग करते हैं 4 बजे आदि जब भी करते हैं उस समय पर हमारा बुद्धि योग स्थिर रहता है परमात्मा के साथ, उनका ही बुद्धि योग स्थिर रह सकता है परमात्मा के साथ जिनके जीवन में इस प्रकार की उपराम अवस्था धारण करने का लक्ष्य होगा। जब लक्ष्य नहीं होगा तो क्या होगा? इसलिए ये सब बातों पर हम सुनते तो है पर साथ साथ हमारी आप सबको निवेदन है, नम्र विनती है कि ये सुनने की बात तो जरूरी है तो साथ साथ इसकी प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। आप सब प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस के आधार पर अपने जीवन के अंदर इस प्रकार की उपराम अवस्था को धारण करने का ये थियोरी का सवाल तो है, थियोरी के आधार पर हमको इस प्रकार का प्रैक्टिकल जीवन बनाने के लिए, उपरम अवस्था वाला जीवन बनाने का मार्गदर्शन तो मिल जाएगा, परंतु सिर्फ प्रैक्टिस करने से क्या होता है, हमें तो सिर्फ सुनने से क्या होता है, और उसके आधार पर उसके जैसा उपरम अवस्था वाला हमारा दैनिक जीवन होगा तब क्या होगा, अंत में भी हम इन सबसे न्यारे और प्यारे रह सकते हैं। सबके लिए होता है, मैं अपना खुद का अनुभव बताऊं कि हमारे घर के अंदर लौकिक में उषा जो शरीर छोड़ा तो बाबा का संदेश आ गया था हमको, सब सुबह सुबह शाम रात को शरीर छोड़ा, सुबह 5 बजे एक संदेशी के द्वारा संदेश आया कि बाबा ने हमको संदेश में कहा कि बच्चे को अचल अडोल अवस्था रखनी है, बाप बनकर के बैठना है और सबको आथक देनी है, अपनी अवस्था को अडोल अवस्था के रूप में रखना है। तो मैंने बाबा को संदेश में ही संदेशी को ही कहा कि आप बाबा को कहना आप मदद करेंगे तो मैं जरूर ऐसी अवस्था धारण कर सकता हूं। तो फिर संदेशी ने बाबा को बताया, बाबा ने कहा बाप तो जरूर मदद करेगा, तो बच्चों में भी वो शक्ति चाहिए, हिम्मत चाहिए। और हमने देखा कि जो भी कारोबार हुआ, चाहे घर में हुआ चाहे शमशान के अंदर हुआ, सब जगह पर हमने बाबा का मदद के आधार पर वो अचल अडोल अवस्था उपराम अवस्था रखी, तो सब पूछते थे कि देखो रमेश भाई कितना न्यारा और प्यारा रह सकता है। अग्नि संस्कार के लिए सबने पूछा कौन अग्निदान देगा, मैंने कहा मैं दूंगा, तो सबने कहा आप कैसे देंगे, तो मैंने कहा उसमें क्या हो गया। तो इस प्रकार से हमने अग्नि संस्कार में अग्निदान भी दिया, सब कुछ किया, बाद में बाहर आकर के सबको कहा कि दिवाली है, दशहरा से बाहर रहे, किसी को भी जो भी आत्मा गई है उसके लिए शोक आदि करने की जरूरत नहीं है, सब अपने अपने जीवन के अंदर जो भी उत्सव उमंग जो भी उत्सव आएंगे उसको उमंग उल्लास से चलाना है। तो इस प्रकार से प्रैक्टिकल परीक्षाएं जब आएंगी उसके लिए पहले से ही मेहनत नहीं की हुई होंगी तो क्या होगा, हम सब पांडव हैं, और पांडवों में जो ज्येष्ठ पुत्र था, मालूम होगा पांडवों में ज्येष्ठ पुत्र कर्ण था, कर्ण को क्या श्राप मिला था कि समय पर तुम ज्ञान भूल जाएगा, याद है, जिन्होंने महाभारत पढ़ा हुआ होगा उनको मालूम होगा कि उसको समय मिला कि समय पर ज्ञान भूल जाएगा, और अंत में भी ऐसा ही हुआ और अर्जुन ने तीर लगाया और उसने शरीर छोड़ा। हम सब पांडव इसी प्रकार के हैं कि थियोरी में हम सब पास हो जाएंगे, उपरम अवस्था के बारे में प्रयोजन करना होगा तो मेरे से भी अच्छे में अच्छा, अच्छे तरीके से, हमारी दादियों से बहनों से भी अच्छे तरीके से कई लोग कर सकते हैं, कई लोग उसके बाद क्योंकि ऑरेटरी होती है उसके आधार पर बोल सकते हैं। तो जीवन के अंदर जब प्रैक्टिकल में परीक्षा के रूप में पेपर सामने आता है तब हम सब कई लोग जो है कर्ण जैसे हो जाते हैं, समय पर ज्ञान भूल जाता है, और समय पर ज्ञान भूल जाता है इसके कारण क्या होता है, खाली उपरम अवस्था की बात नहीं है पर समय पर ज्ञान भूल जाता है। हम जानते हैं काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि नहीं करना चाहिए, जानते हैं ना, सब जानते हैं, परंतु समय पर भूल जाते हैं और क्या होता है, भाइयों का वीकेस्ट पॉइंट जो होता है क्रोध का हो जाता है, समय पर हम भूल जाते हैं और कह देते हैं क्या करें हम भूल गए, हम क्या करें, हमारा संस्कार ऐसा था, हमारी बात ऐसी बन गई तो हम क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जब समय पर ही अगर हम सावधान नहीं हो सकते और हमारी अवस्था को संभाल नहीं सकते तो क्या हो जाएगा, अंत समय की अवस्था में समय तो शरीर के जो है अंगम गलिदम पलिदम मुंडम, इस प्रकार से शंकराचार्य जो कहा हुआ है अंग में ताकत चली जाएंगी, सब प्रकार की शक्तियां इंद्रियां जो है अपने जीवन के अंदर अपने व्यवहार के अंदर मददगार नहीं बन सकती, उस समय पर क्या होगा, अंत समय में तभी ही सफलता होगी, तभी ही हमको सफलता प्राप्त होगी जब पहले से ही इस प्रकार का अभ्यास होगा। तो इसलिए हमारी आप सबको यही विनंती है कि उपराम अवस्था जो है वो उसका थियोरी में ज्ञान तो सबको है, अच्छे में अच्छा आर्टिकल भी आप लिख सकते हो ज्ञानामृत में आदि आदि में, या अपनी भाषाओं में भी लिख सकते हो, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु जब परीक्षाएं आएंगी, जब समय आएगा, समय वर्ते सावधान जिस प्रकार से कहते हैं, इस प्रकार के समय के समय अंतिम समय या जीवन का या औरों का जीवन का अंतिम समय होगा, उस समय पर अगर उपराम अवस्था धारण कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो इसलिए इस कार्य को आप ध्यान में रखिए कि हमारे को ये उपराम शब्द जो है और उपराम अवस्था जो है वो सिर्फ थियरी नहीं, वो तो प्रैक्टिकल में वो करके दिखाना है, ताकि क्या हो जाएगा आगे चल करके जब अंतिम समय आएगा, विनाश का समय आएगा, तो बाबा कहते हैं ना अंतिम समय की जो परिस्थितियां जो देखने की होगी बहुत कम लोग देख सकेंगे, क्योंकि सबने अपने जीवन में इस प्रकार का जीवन नहीं बनाया हुआ होता है। इसलिए क्या होता है, होलसेल में शरीर छोड़ते हैं, क्या क्या होता है उस समय पर अपनी अवस्था डामाडोल ऊपर नीचे हो जाएगी तो क्या होगा। तो इसलिए हम जानते हैं कि अंतिम समय विश्व का विश्व परिवर्तन के बारे में कैसा होगा, उस समय की भी परिस्थितियों को देखने के लिए, समझने के लिए और जानने के लिए और अपनी अवस्था बनाने के लिए पहले से ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। और इसलिए ही हमारे यहाँ टॉपिक भी चलता है जो विनाश के समय पर हमारी अवस्था कैसे होगी, विनाश के समय पर कारोबार कैसे होगा, क्या क्या हो सकता है, इस प्रकार से डिजास्टर मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट होता है। और डिजास्टर मैनेजमेंट में अपने ही जीवन के अंदर इस प्रकार से डिजास्टर आ जाए तो उस समय पर क्या हम अपने जीवन के अंदर उपराम अवस्था धारण कर सकते हैं या नहीं। तो इसलिए ये थियोरी का सवाल नहीं है, परंतु प्रैक्टिकल जीवन बनाने का सवाल है। और जो इस प्रकार से करेगा, क्योंकि अंतिम घड़ी जो होती है ना वो एक सेकंड का पेपर होगा। अभिव्यक्त बाप दादा ने कहा हुआ है एक मुरली में कि आपके सामने अंतिम समय पर पेपर आएगा, वो अंतिम समय का जो पेपर होगा वो एक क्षण का पेपर होगा, और एक क्षण की परीक्षा में जो पास हो गए वो बिंदीधारी बन सकते हैं, और अंतिम अवस्था के समय का जो पेपर होगा उसमें जो फेल हो जाएगा वो बिंदीधारी नहीं परंतु चिंदीधारी बन जाएगा। अर्थात सत्यु की दुनिया का मालिक बनना है, सत्यु की दुनिया के अंदर विश्व महाराजा के परिवार में आना होगा, तो हमारी अंतिम अवस्था श्रेष्ठ होनी चाहिए। अंतिम अवस्था के समय पर जो भी पेपर आएगा उस समय पर अगर हम परीक्षा में पास हो गए तो बिंदीधारी, और उसमें फेल हो गए बाकी सारी जिंदगी बहुत ही सेवा किया, बहुत बड़ा सेवा के बहुत नंबर अनेक सेवा केंद्र स्थापन किए, अनेक प्रकार की सेवाएं की हुई होंगी, पर अंतिम समय की एक सेकंड की परीक्षा। और इसलिए तो बाबा ने बता दिया है ये परीक्षा ऐसी है जिसका पेपर पहले से ही लीक आउट हो गया है। आप सबको मालूम है बाबा के परीक्षा में बाबा ने अंतिम परीक्षा का पेपर पहले से ही लीक आउट कर दिया है। आपको मालूम है दो प्रश्न अंतिम समय पर होगा, नष्ट मोह कितना और स्मृति लब्ध हुआ कितना, वो अंतिम समय के समय की ये बात है। ये पेपर अंतिम समय के अंदर जो इस दो परीक्षा के अंदर जो फेल हो गए वो चिंदीधारी मतलब बहने जो है ना, यहाँ आपने पुराना जो पहला झाड़ का कल्प वृक्ष का चित्र बना हुआ होगा उसमें सीता को आपने देखा होगा, बिंदी चिंदी है इसमें। मैंने बाबा से पूछा था कि बाबा ये चिंदी कहते हो क्या होता है, हम तो समझते नहीं है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे ने कल्प वृक्ष बराबर देखा नहीं है, कल्प वृक्ष का चित्र में देखो सीता को यहाँ पर, जैसे राजस्थान की माताएं जो है वो चिंदी पहनती है यहाँ पर ऐसे होता है। तो बाबा ने बताया कि सीता को चिंदी दिखाई थी, तो चिंदीधारी जो है मतलब त्रेता योगी बन जाएंगे, और परीक्षा में जो पास हो जाएंगे वो क्या होगा बिंदीधारी बन सकेंगे। तो ये अंतिम समय की परीक्षा के लिए अब से ही तैयारी नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। ये परीक्षा ऐसी है जिसमें दुनिया में आप जानते हैं कॉपीइंग कैसे कर सकता है। कल ही हमारे पास एक ईमेल आया हुआ है कि दुनिया में कॉपी कैसे कर सकते परीक्षाओं में कैसे करते हैं, कोई पांव में लिखते हैं, कोई हाथ में लिखते हैं, कोई नख में लिखते हैं, क्या क्या करते हैं। एक ने तो अपने जूते के अंदर चिटका कर रखा था आंसर, इस प्रकार से कॉपी करते हैं। पर ये अंतिम समय की परीक्षा ऐसी है जिसके अंदर ना आप कॉपी कर सकते, जिसके अंदर आपको कोई और सहायक के रूप में काम नहीं कर सकते, मदद नहीं कर सकता, आपको अकेला ही ये अंतिम समय का पेपर देना होगा। और इसके लिए ही अभी से ही उपराम अवस्था का आपको यह बहुत सुंदर चांस मिला हुआ है भट्टी के अंदर आने का। तो इस प्रकार से भट्टी के अंदर आकर के आप इस उपराम अवस्था का धारण करने का प्रयत्न कीजिए, पुरुषार्थ कीजिए। तो ये तो हुई उपराम अवस्था की बात। मैंने बहन जी को कहा था मैं आधा घंटा उपरावस्था के साथ ऊपर बात अपने हमारे भाइयों से बात करूंगा। और दूसरा एक टॉपिक है जो आप सब उसमें बहुत अनुभवी है, और दूसरा एक टॉपिक जो है वो आप ओपनली बताया नहीं गया हुआ है। जैसे आप जानते हैं ओपनली बताया जाता है पांच विकार, मालूम है ना सबको, मालूम है पांच विकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो पांच मेन है और उसके सिवाय अलग अलग भी है। छठा विकार भी मालूम है ना आप सबको, छठा विकार कहाँ क्या है, आलस है वो ये है, मतलब पांच मुख्य है और उसके साइड में उनके इफेक्ट के रूप में आलस अलबेलापन आदि आदि जो भी है वो उस प्रकार से रहते हैं। तो इस प्रकार से अलग पांच विकार के साथ अलग अलग टॉपिक जो है उसके अंदर भी हमको सफलता प्राप्त करनी ही होंगी। उस प्रकार से ज्ञान के स्टडी के अंदर भी चार सब्जेक्ट है, आप जानते हैं ज्ञान योग धारणा और सेवा, बराबर है आप सब जानते हैं। परंतु उसके अलावा एक पांचवा भी सब्जेक्ट है जो गुप्त है, जैसे गुप्त नदी जो होती है ना इलाहाबाद में त्रिवेणी संगम जो होता है वहां पर क्या होता है, सरस्वती नदी जो है गुप्त रूप में होती है। और तो इस प्रकार से ये गुप्त सब्जेक्ट भी है, चार सब्जेक्ट के सिवाय पांचवा सब्जेक्ट, और उसके अंदर भी पास होना है वो सब्जेक्ट का नाम है मैनेजमेंट, कारोबार करने की शक्ति, कारोबार करने की करने का अनुभव और उसके आधार पर कारोबार करना चाहिए, ये बाबा ने हमको सिखाया था। मैंने अव्यक्त बाबा को कहा था कि बाबा माया परीक्षा लेती है, दुनिया परीक्षा लेती है, अनेक प्रकार के दुनिया के प्रलोभन हमारी परीक्षा लेते हैं, आप क्यों हमारी परीक्षा लेते हो, आपको तो हमें इन परीक्षाओं के सामने रक्षा हमारी करनी चाहिए, उसके बदले में आप खुद ही परीक्षा लेने के लिए तैयार हो जाते हो और हमारी परीक्षा लेते हो। और मैं आपको बताऊं कि बाबा की परीक्षा बहुत सूक्ष्म होती है और बहुत विचित्र होती है, मालूम नहीं पड़ेगा कि बाबा हमारी परीक्षा लेते हैं क्या कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बाबा की परीक्षा, तो मैंने बाबा से पूछा आप क्यों परीक्षा लेते हो, आपके तो फर्ज है बच्चों की रक्षा करने का। तो बाबा ने कहा मैं क्यों नहीं परीक्षा लूं, मैंने कहा क्यों, तो बाबा ने कहा कि मुझे, क्योंकि आप जानते हैं बाबा का कर्तव्य और अलग अलग धर्म स्थापक का कर्तव्य क्या है, अलग धर्म स्थापक स्थापना करते हैं और उसके बाद बाबा ने बताया हुआ है कि अलग अलग धर्म स्थापक अंत तक विश्व परिवर्तन के कार्य तक यहाँ पर सृष्टि में रहते हैं और सृष्टि में रह करके अपने धर्म की पालना करते रहते हैं और उसके अंदर विभिन्न प्रकार से उसके कारोबार को आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करते रहते हैं। परंतु बाबा ने कहा है, आप सब जानते भी हैं कि बाबा ने कहा कि मैं तो सतयुग में आता नहीं हूं, न सतयुग में आऊंगा न त्रेता युग में आऊंगा, मुझे 2500 वर्ष तक आप बच्चों के हाथ में विश्व का कारोबार देना है, विश्व का मैनेजमेंट का कारोबार आप बच्चों के हाथ में रहना है। और उसके लिए बाबा ने तीन टच स्टोन का शब्द कहा हुआ है, अखंड अटल और निर्विघ्न, अखंड अटल निर्विघ्न जो है विश्व का कारोबार का मैनेजमेंट का कारोबार 2500 वर्ष तक हमारे हाथ में देना है। तो बाबा ने कहा कि जब मुझे इतना बड़ा जिम्मेदारी का कारोबार आपके हाथों में देना है तो मैं क्यों नहीं परीक्षा लूं और बताऊं कि लायक बच्चा कौन है। बाबा ने कहा, बाबा ने अव्यक्त बाबा ने भी कहा कि दुनिया के अंदर आप बच्चे जो है मटका भी खरीदने के लिए जाते हैं पानी का, तो उसमें लीकेज है या नहीं उसके लिए टक टक करके देखते हैं कि बराबर है या नहीं, इस प्रकार से एक साधारण मटका खरीदने के टाइम पर भी आप ध्यान रखते हो कि ये ठीक है या नहीं क्या है, तो इस प्रकार से इसके अंदर भी आपको ध्यान रखना चाहिए। बाबा कहते हैं कि मैं भी ध्यान रखूंगा कि विश्व का कारोबार जिसके हाथ में देना है तो ऐसे बच्चे लायक बच्चे हमारे ही दैवी परिवार में से ही बाबा ने कहा है कि विश्व महाराजन का भी बन सकते हैं, रॉयल फैमिली के सदस्य भी बन सकते हैं, साहूकार भी बन सकते हैं, प्रजा भी बन सकते हैं, इस प्रकार का जो भी चुनौती होगी, जो भी क्लासिफिकेशन होगा, जो भी डिवीजन होगा समाज का, वो सब हमारे ही इस दैवी परिवार के बीच में से ही होने वाला है और उसके अंदर विश्व महाराजा के रूप में कारोबार करने के लिए जो भी लायक बनेगा उसके हाथों में बाबा मैनेजमेंट का कार्य दे देगा। मनुस्मृति में भी यही प्रश्न है, मनुस्मृति में पहला अध्याय में दसवां श्लोक यही है कि परमात्मा ने नई सृष्टि रची, सुवर्ण गर्भ के रूप में परमात्मा ने, सूर्य के रूप में परमात्मा ने नई सृष्टि रची। और उसके बाद उनके सामने ये प्रश्न आया कि मैं किसको ये सृष्टि का, नई सृष्टि जो मैंने रची उसके मैनेजमेंट का कारोबार मैं किसको दूं। और उसमें वो श्लोक है, उसमें तो उसमें अभी तो मैं भूल गया हूं पर तो अर्थ मुझे याद है कि उसमें कहा कि इसलिए उन्होंने क्या किया कि पिछले कल्प में जिसके तन में आते थे अवतरण नारायण और नर प्लस अयन, अयन माना आने का स्थान, जिस नर परमात्मा का आने का स्थान था उसको ही परमात्मा ने नए विश्व के कारोबार के लिए, मैनेजमेंट के लिए चुन करके इनके हाथों में ही नई सृष्टि का कारोबार दिया। इस प्रकार से बाबा ने जिस तन में आते थे उसके हाथ में कारोबार दिया। सब जगह पर यही होता है, आप देखेंगे यीशु क्राइस्ट जो है उसने भी अंतिम समय में लास्ट सपर खिलाया, लास्ट भोजन कराया, उसमें भी उसने चमत्कार दिखाया। उसके पास दो ब्रेड थे, दो मछली थी और कुछ दो था, मतलब वो इतने में जितनी सभा जो 15-20-25 जो भी उनके शिष्य बैठे थे उन सबको खाना खिलाया, फिर भी इतना कि इतना रहा, वो उसका अंतिम चमत्कार था। और उसके बाद सेंट पीटर जो है उसको कहा कि उसके हाथ अपने चावी जो है विश्व अपने बाद में अपने बाद के कारोबार करने के लिए, मेरा सक्सेसर मेरा कारोबार करने के लिए तुम आगे बढ़ाएगा, तुमको आज से सब फादर कहेंगे और फादर कर करके तुमको इस हमारा कारोबार जो मेरा है उसके आधार पर उसको आगे बढ़ाने का कारोबार करना है। दुनिया में सब जगह पर यही होता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सब इमॉर्टल नहीं है परंतु पेरिशेबल है, तो इसलिए मॉर्टल है। तो इसके लिए हर एक जगह पर अपने आने के बाद में कारोबार करने के लिए निमित्त तो कौन बन सकता है। हमारे यहाँ पर चन्ना रेड्डी करके जो थे राजस्थान के गवर्नर थे, पहले अपने आंध्र प्रदेश के भी चीफ मिनिस्टर रहे, बाद में यूपी के गवर्नर रहे, उसके बाद फिर राजस्थान के गवर्नर बने और यहाँ अच्छे संपर्क में थे। उन्होंने अपना अनुभव मुझे सुनाया कि मैं अभी वो गए थे कुछ काम के लिए, तो वहां गए, वहां से वो पहले वो इसका जो सच्चे साईं बाबा जो है पुट्टपर्ती यादव व्हाइट प्लेन्स जो है उनके उनके शिष्य थे, उनके साथ संबंध अच्छा था, तो उनको मिलने के लिए गए। तो इन्होंने उनको बहुत अच्छी बात कही अपने सत्य साईं बाबा को कि आप हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। क्यों? साईं बाबा ने कहा क्यों, तो कहा आपके बाद क्या, इस प्रश्न का आपने तैयारी नहीं की हुई, उसके अपने उत्तराधिकारी लायक उत्तराधिकारी जिसके हाथों में आप अपना ये कारोबार अच्छी रीत से दे सको, और वो आपका कारोबार आपने बनाया हुआ जो भी इतना बड़ा कारोबार है अपना, इतना बड़ा फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाई आदि आदि जो भी है उसको संभालने के लिए लायक आपके बात का कुछ नहीं है। और इसलिए क्या होगा, दुनिया में भी कहते हैं कि दिया के नीचे में अंधेरा होता है, उस प्रकार से आपके पास अंधेरा हो जाएगा, आपके पास ये संस्था आगे कैसे चलेंगी उसके बारे में आपने कुछ नहीं किया है। और मैं ब्रह्मा कुमारी में जाकर के देख के आया हूँ, उस टाइम पर यहाँ भट्टी थी ऊपर में ओम निवास में, तो उसमें 3000 जितनी बहनें आई हुई थी समर्पित बहनें, जैसे आप भाई लोग आए हो उस प्रकार से उस समय पर 3000 जितनी बहनें थी, उनका वो उनका अव्यक्त बाप दादा से मिलन था और बाबा ने उनको ही कहा, बाबा से स्टेज पर मिलते थे, बाबा ने उनको कहा कि बच्चे पीछे देखो क्या है, तो पीछे देखा उन्होंने तो देखा 3000 बहनें बैठी हुई। बाबा ने कहा देखो बाबा इनको तैयार कर रहे हैं, किस बात के लिए तैयार कर रहे हैं कि बाबा अव्यक्त तो हो जाए, मतलब विश्व का कारोबार विश्व नया विश्व परिवर्तन हो जाए, उसके बाद संभालने वाला कौन, तो इन बहनों में से इनके अंदर से ही ऐसी बहनें तैयार होगी वो नया कारोबार जो है नए विश्व का संभाल सकेंगी। तो उसने बताया सच्चे साईं बाबा को, इस शिव बाबा को भी ये ध्यान में रहता है कि मुझे मेरे कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए, मेरी कारोबार का मैनेजमेंट अच्छा करने के लिए मैं अभी से ही वो ट्रेनिंग देते हैं। इसलिए मैं कई बार मैंने ज्ञानामृत में भी लिखा हुआ है कि ये कॉलेज क्या है, ये भी एक विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, विद्यालय है। और इस कॉलेज के अंदर क्या होता है, किसको पढ़ाई मिलती है? इस कॉलेज के अंदर होवनहार, नए विश्व के होवनहार जो भी राजकुमार राजकुमारी है, या तो जिनके हाथों में विश्व का भविष्य का कारोबार बागडोर, जिनके हाथों में परमात्मा को जिनको लायक समझ करके जिनके हाथों में कारोबार की बागडोर देने वाले हैं, ऐसे बच्चों को, ऐसे होनहार विश्व के भविष्य के महाराजा महारानियां, विश्व महाराजा महारानी बनाने का और सीखने का और इस प्रकार के तैयार करने की ये कॉलेज है। तो ये कॉलेज को हम कम न समझें। हमारे सौराष्ट्र में वहाँ राजकोट में एक कॉलेज थी पहले, प्रिंसेसेस कॉलेज। उसके अंदर जो भी राजकोट सौराष्ट्र में बहुत से छोटे छोटे राजा महाराजा आए थे, उनके बच्चों को सिखाने के लिए पढ़ाई देने के लिए वहाँ पर स्कूल थी। और उसके अंदर जो भी होवनहार राजा भविष्य के होंगे उसका कारोबार उसके अंदर देते थे, सिखाते थे, ताकि जब राज्य का कारोबार उनके हाथ में हो तो अच्छा राम राज्य के रूप में अपना राज्य का कारोबार कर सके। तो एक दुनिया के अंदर भी छोटे छोटे स्टेट का भी जो भी होता है उनके हाथों में भी कारोबार जो होता है, उनके हाथ में भविष्य में जब उनके हाथ में कारोबार आएगा तो उसके लिए भी तैयारी करते हैं। अभी भी आप देखेंगे, सुना हुआ होगा कि प्रिंस विलियम्स जो है इंग्लैंड के अंदर राजा रानी के बाद प्रिंस चार्ल्स आएगा, उसके बाद प्रिंस विलियम्स आएगा। विलियम्स को भी उन्होंने अभी से इसी तैयारी करते हैं कि हर बात में हर जगह पर अभी उसको नेवी के अंदर गए भेजा हुआ है, तो नेवी का कारोबार कैसे चलता है वो सिखाते हैं। इस प्रकार से ऑलराउंड पर्सनैलिटी उसकी डेवलप करते हैं ताकि जब राजगद्दी पर वो आएगा तब सारा कारोबार उनको मालूम होकर कैसे चलता है, कैसे कारोबार होता है। तो इस प्रकार से हम सबके हाथ में ये मैनेजमेंट का प्रश्न है ही। और बाबा हम बच्चों में से ही ऐसे होनहार नए विश्व के बागडोर कहो, या तो जिनके हाथों में राज्य कारोबार, विश्व का राज्य कारोबार जिसके हाथों में हो सकता है, ऐसे लायक बच्चों का हम बच्चों में से ही तैयार करके रखते हैं। कौन होगा मालूम नहीं है, भाई भी हो सकते हैं अब वर्तमान समय में, और बहनें भी हो सकती है, क्योंकि बहन भाई जो भी है वह भविष्य के दुनिया के कारोबार के लिए काम में आएंगे। बाबा ने पहले से ही बनाया हुआ था। जब मातेश्वरी जी अव्यक्त हो गए तो मैं बाबा को पत्र लिखता था, मैंने कहा बाबा आप मातेश्वरी जी तो संस्था का हेड थे, आपको मालूम होगा 1937 में जो बाबा ने कमिटी बनाई बहनों की, उसके अंदर उसके मुखिया के रूप में मातेश्वरी जी को रखा हुआ था। तो मैं बाबा को पत्र लिखता था कि बाबा अभी तो मातेश्वरी जी अव्यक्त हो गए, तो उसके बाद आगे का भविष्य का कारोबार किसके हाथ में रहेगा, वो आपको पहले से ही प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा, पहले से ही प्रिस्क्राइब करके ही रखना पड़ेगा। बाबा के देख के बच्चे देखेंगे, समय पर मैं कर दूंगा, समय पर मैं कर दूंगा। और 1 अप्रैल 1966 आप जानते हैं मातेश्वरी जी का 25 जून को जो आता है उनका मातेश्वरी जी का दिन आता है, वो 65 के आता है। उसके बाद 1 अप्रैल 1966 के दिन बाबा ने अपने हाथों से मुरली के अंदर लिखा कि अभी संस्था की मुखिया जो है दादी प्रकाशमणि और उसके साथ मुख्य सह प्रशासिका दीदी मनमोहिनी होंगे। और बाबा ने वो मुरली में लिखा और मुरली सब जगह पर चली गई और मुझे भी एक कॉपी भेजी और मुझे कहा कि बच्चा तो घड़ी घड़ी कहता था ना कि भविष्य का कारोबार मातेश्वरी जी के रूप में आपने मातेश्वरी जी को लिखा हुआ था, लिखा था ऑफिशियली, इस प्रकार से ऑफिशियली कारोबार किसके हाथ में होगा। तो इसलिए बाबा ने लिखा कि देखो दादी प्रकाशमणि कुमार का बच्ची मतलब बाबा और दीदी मनमोहिनी के हाथ में कारोबार होगा। इस प्रकार से बाबा ने पहले से ही फिक्स कर दिया। और इतने तक आप सबको बताऊं, आप सबने तो स्टडी नहीं किया हुआ होगा, डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन जो बना बाबा ने बनाया, आपको मालूम होगा जब बाबा अव्यक्त हो गए उसके बाद बाबा ने पहला काम यही दिया हम बच्चों को, मुझे ही कहा कि आप सबको अभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ेगा और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर यह विश्वविद्यालय चलेगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो उसमें बाबा ने संदेश के द्वारा कहलाया, बहुत सुंदर बात कही बाबा ने, कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो भी होगा उस अगर उसका शरीर छूटता है तो ऑटोमेटिकली जो एडिशनल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड जो होगा वो ऑटोमेटिकली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बन जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे दुनिया के अंदर इंग्लैंड के अंदर भी ऐसा ही होता है कि एक राजा शरीर छोड़ता है तो इसका अनाउंसमेंट ऐसा नहीं करते, अनाउंसमेंट उसकी जगह पर क्या होता है नया राजा का अनाउंसमेंट कर देते कि ये राजा बनेगा, और उसके बाद अनाउंसमेंट करते हैं कि पुराना राजा जो था या महारानी जो थी उसने शरीर छोड़ा। उसको अंग्रेजी में कहते हैं लॉन्ग लिव द किंग, किंग इज डेड। इस प्रकार की उनकी ट्रेडिशन है, लॉन्ग लिव द किंग, किंग इज डेड होता है। नया जो राजा है उसको कहते हैं उसका जीवन बहुत लंबा दीर्घायु रहे, और पुराना जो राजा था उसने शरीर छोड़ा। इस प्रकार के वंश परंपरा राज्य कारोबार के लिए रहती है, वहां उनका वो नियम है। और यहां पर बाबा ने पहले से ही बना दिया और डिवाइन कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया, इसलिए क्या हो गया यहां पर कभी भी गैप नहीं हो सकता है, क्योंकि कानून है। लॉ की दुनिया में भी कानून है कि प्रॉपर्टी के मालिक बिना कोई भी प्रॉपर्टी नहीं रह सकती है, कोई भी प्रॉपर्टी। और इसलिए क्या होता है कि उसके वारिस जो होते हैं, हिंदू लॉ के अंदर भी वारिसों की लिस्ट है, 108 प्रकार के वारिस होते हो सकते, पहले 6 पीछे 12 ऐसे प्रकार करके करते करते 108 प्रकार के वारिस जो है जिनके हाथ में प्रॉपर्टी आएंगी मालिक बन सकते हैं। और 108 प्रकार के वारिस में से कोई भी नहीं होगा तो 109 नंबर पर भारत सरकार है, अर्थात प्रॉपर्टी जो है कभी भी उसके मालिक के बिना रह नहीं सकती है, देयर शुड बी ए ओनर उसका प्रॉपर्टी का। इस प्रकार से दुनिया के अंदर भी यह कारोबार चलता है, तो यज्ञ कारोबार के अंदर भी इस प्रकार से ही हम बच्चों को ये लायक बनना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं कारोबार के अंदर आगे बढ़े, इतना आगे बढ़े आगे बढ़े। हाँ, इसके लिए घरबार में रहते हैं तो ठीक है, मतलब घरबार में रहते हुए मैनेजमेंट का कारोबार हाथ में नहीं आएगा। आप जानते हैं, आप अखबारों में एडवर्टाइजमेंट पढ़ते होंगे कि हमको ये चाहिए, मैनेजर चाहिए, किसको? उसमें लिखा हुआ है 3 से या 5 साल का अनुभवी होगा उसको ही हम मैनेजर के पोस्ट में एप्लीकेशन देने के लिए कहते हैं। आप पढ़ते होंगे, रोज आता है टाइम्स ऑफ इंडिया में, हफ्ते में एक दिन आ जाता है, उसमें एडवर्टाइजमेंट्स आती हैं, हमको 3 से 5 साल, कोई लिखता है 10 साल, ऐसे ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, वहां तो चुनने के लिए अनुभवी चाहिए। अनुभव के बिना ऐसे नए व्यक्ति के हाथ में कारोबार नहीं दे सकते हैं, दुनिया का भी कानून है। दुनिया के अंदर भी इस प्रकार से अनुभव की जरूरत है, और अनुभव कब आएगा जब इस प्रकार का कारोबार किया हुआ होगा, मैनेजमेंट किया हुआ होगा, तब वो कार्य के लिए हम लायक बन सकते हैं। तो इसलिए ये सब आप सबको मैं हमारा खास मैं आपको ध्यान दिलाता हूँ कि ये भविष्य के होनहार विश्व महाराजा या महाराजा या राजा आदि जो भी आप कहो, इस प्रकार के जो भी परंपरा जो बनेंगे उस परंपरा का, क्योंकि बाबा ने कहा हुआ है कि यहां से ही सब अपना भाग्य बना करके लेके जाएंगे। बाबा ने कहा है मुरली में कि लक्ष्मीनारायण नंबर 2 जो है वो भले उसकी गद्दी के बैठेगा, परंतु यहाँ के किए हुए पुरुषार्थ के आधार पर ही 2nd नंबर आदि उसका बन सकता है। तो इसलिए ये सब आपको ध्यान में रहे, तो इसलिए भविष्य का कारोबार के लिए लायक बनना, हम सब अनुभवी बन रहे हैं। आप सभी अभी रिवाइज मुरलियां, क्योंकि कईयों ने तो 69 से तो मुरलियां उस समय पर नहीं भी होंगे आप में से कहीं, तो अभी रिवाइज मुरलियां हो गई हैं। तो रिवाइज मुरली में बीच में तो दो दिन के गैप पर अगर तो बाप दादा आते थे शुरू में 63, 71, 72 आदि जो भी 73, 74, आस्ते आस्ते बाबा जो है अपने को न्यारा करते गए। और उस टाइम पर क्या था, हम बच्चे नए थे। 21 जनवरी की मुरली में बाबा ने कहा है अब तक तो आपके कारोबार के अंदर सूर्य भी था और चंद्रमा भी था। हम मातेश्वरी को चंद्रमा बाबा कहते थे और ब्रह्मा बाबा को ज्ञान सूर्य के रूप में कहते थे, सूर्य लौकिक कारोबार के दृष्टिकोण। अब ज्ञान सूर्य भी नहीं है, ज्ञान चंद्रमा भी नहीं है, अब क्या होगा? अब आप ज्ञान सितारों की रिमझिम किस प्रकार से विश्व रंगमंच के ऊपर कारोबार होगा, इस प्रकार से उसको हम सब न्यारे बनकर के देखेंगे और उसके अंदर से देखते हैं कौन सा सितारा अच्छे में अच्छा कारोबार कर सकता है। उस प्रकार से ऐसे आप ज्ञान सितारों के अंदर से ही हमें सुनना है कि कौन भविष्य के दुनिया के कारोबार के अंदर जिसको हाथों में इस प्रकार की कारोबार दिए जा सकते हैं, लायक कौन है। इस प्रकार से लायक बच्चों का हम परीक्षा करके देखते रहेंगे। और शुरू में बाबा ट्रेनिंग में देते थे, बहुत बार हम सवाल भी पूछते थे, मैसेज भी पूछते थे, बाबा ये करे क्या करे, ये करे क्या करे, कैसे करे। बाबा को भी घड़ी घड़ी आना पड़ता था। अब क्या हो गया, अब आप जानते हैं साल में 10 बार मुश्किल से बाबा आते हैं। पहले तो ज्यादा टाइम पर आते थे, आपको मालूम होगा जब ऊपर में जो मकान जो है ना, ये क्या कहते हैं वो बाजू में जो है ना, मैं नाम भूल गया हूँ, पांडव अपने ओम शांति भवन के बाजू में जो है ना, सुखधाम क्या उद्घाटन करने के लिए सुबह 9 बजे तक, शाम को 6 बजे से बाबा आए, दूसरे दिन सुबह 9 बजे बाबा आगे पैसेज में आकर के बाबा ने वहां से रिमोट के द्वारा वो सुखधाम का ओपनिंग किया। इतने इतने घंटे तक बाबा बैठते थे। आस्ते आस्ते बाबा क्या करते हैं, हम बच्चों को आगे रखते थे, हम लोग भी अनुभव के द्वारा सीख गए कि इसके आधार पर कैसे कारोबार करने का बाबा हमको ट्रेन करता रहता है। और उसके कारण क्या है, हम भी अभी इतने बाबा को सवाल नहीं भेजते। आज भी गुलजार दादी जो है, हम दिल्ली में रहती है, इधर उधर जाती है, हमको संदेश पूछना होता है, हम बाबा को संदेश नहीं पूछ सकते। हम समझते हैं हमको ऐसा कारोबार करना है, क्योंकि बाबा ने एक बहुत सुंदर हमको एक बात सिखाई थी। जब दिल्ली का पांडव भवन लिया गया, तो पांडव भवन लेकर के फिर मैं यहाँ आबू में आया हुआ था, तो अव्यक्त बाप दादा से जब मिलन हो रहा था, तो मैंने बाबा से पूछा कि बाबा ये दिल्ली का जो नया मकान खरीद किया है उसका नाम क्या होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया ना, बाबा एक सेकंड में परीक्षा ले लेते हैं, बाबा की परीक्षा एक सेकंड की होती है। बाबा ने मुझे कहा, बच्चे तुम ही बताओ उसका नाम क्या होना चाहिए। तो इसलिए बाबा की परीक्षा के लिए हमेशा ही 24 घंटा मतलब तैयार रहना चाहिए। कभी भी बाबा कहाँ से भी एक प्रश्न पूछ लेंगे, कहाँ से भी परीक्षा करेंगे, हमें मालूम नहीं पड़ेगा। बाबा ने मुझे एक सेकंड में परीक्षा हमको पूछ लिया, बच्चे तुम ही बताओ उस भवन का नाम क्या होना चाहिए। तो मैंने बाबा को कहा, मेरे ख्याल में तो उसका नाम पांडव भवन होना चाहिए। क्यों? मैंने कहा कि ये जो पांडव भवन जो है आबू का, ये संगम युग की राजधानी और दिल्ली जो है भविष्य की राजधानी बनेंगी, उसका हेडक्वार्टर के रूप में ये पांडव भवन होना चाहिए। बाबा ने कहा, बच्चे का विचार बहुत सही है। और इसके कारण बाबा ने कहा कि आज के बाद भारत के अंदर और कोई भी मकान का नाम पांडव भवन नहीं हो सकता, ये दो ही पांडव भवन होंगे, एक वर्तमान का पांडव भवन और एक भविष्य का पांडव भवन, और इसके अलावा नहीं होगा। और फिर बाबा ने हमको कहा कि बच्चा देखो, बाप समान बनना इसका क्या अर्थ होता है। मैंने कहा, आप बताओ क्या अर्थ होता है। कहा, बाप समान विचारधारा, विचारधारा और बाप समान निर्णय शक्ति, बाप समान परखने की शक्ति। आज आप जानते हैं योग के द्वारा 8 शक्तियां आती हैं, वो 8 शक्तियों का भी अंतिम स्टेज क्या, श्रेष्ठ में श्रेष्ठ स्टेज क्या, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं निर्णय शक्ति, परखने की शक्ति आदि आदि जो आप जानते हैं, तो उसमें वो शिव बाबा ही है। तो इसलिए बाप समान हमारी निर्णय शक्ति होनी चाहिए, बाप समान हमारी विचारधारा हो सकती है, बाप समान जब समस्याएं आती तो उसका व्यवहार और उसका उसके आधार पर उसका कारोबार करने के लिए निमित्त बनना पड़ेगा। अनेक प्रकार की परीक्षाएं आती है, अनेक प्रकार की परीक्षाएं, जब आप मैनेजमेंट में आते हो तो आपके सामने रोज परीक्षाएं आती है। हमारे कमरे में या ऑफिस में भी जो भी आते हैं, पहले जो आते हैं, आकर आते हैं, मैं हमेशा ही कहता हूं कि ये हमारे सामने जो आए हैं हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हुए हैं और मुझे इस परीक्षा में पास होना ही है। तो इस प्रकार से परीक्षाएं हमारे सामने आती है, कारोबार के अंदर भी परीक्षाएं आती है, सब प्रकार की, सबके तन की, मन की, धन की, सेवा केंद्रों की, अनेक प्रकार की बातें आती है। और इस प्रकार से क्या होता है, हाँ राजी प्रकाशमणि कितना फर्स्ट क्लास कारोबार करते रहे थे। तो बाबा ने शुरू से ही उनको कहा था, ये पौनी मम्मा है, मातेश्वरी जी 100% मम्मा थी, और दादी प्रकाशमणि को शुरू से ही कहा था कि ये पौनी मम्मा है, मतलब 3/4 मम्मा है। और इस प्रकार से इन्होंने बहुत सुंदर यज्ञ का कारोबार करके दिया, कितना सुंदर मैनेजमेंट किया। जब ज्ञान सरोवर बनता था तब 2 महीने तक वहां जाकर के ज्ञान सरोवर के मैनेजमेंट कैसे हो, कंस्ट्रक्शन में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से 2 महीने जा करके वहां के सभी डिपार्टमेंट्स आदि का सेटिंग किया और सुंदर रूप में ज्ञान सरोवर का कारोबार दादी प्रकाशमणि ने सेट किया। उसके बाद जब शांति वन बन रहा था तब तीन चार महीने तक लगातार दादी पांडव भवन से रोज यहाँ आती थी और आकर के कारोबार के अंदर ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसके लिए ये कारोबार, इसके लिए ये कारोबार, इस प्रकार से होता था। इतने हद तक मैं आपको एक बताऊं, जब ज्ञान सरोवर के अंदर एकेडमी जो बनी हुई है ना, जिसके अंदर 12 कमरे हैं, 12 कमरे के अंदर मुझे लेके गए, कहा कि इस कमरे में ये बनेगा, इस कमरे में ये बनेगा, इस कमरे में ये बनेगा, इतने हद तक उनका प्लानिंग था। और 13 नंबर का कमरा जैसा, मैंने कहा दादी सब तो 12 विंग थी, तो 12 विंग का तो 12 हो गया, उस टाइम पर ज्यादा विंग नहीं थी, तो 12 विंग का 12 कमरा हो गया, इस कमरे में क्या होगा? तो दादी ने कहा कि बाबा की इच्छा है इस कमरे के अंदर रिसर्च का कारोबार होना चाहिए। हर संस्था के अंदर, दुनिया के अंदर भी होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कारोबार होता है, तो इस प्रकार से यहाँ पर रिसर्च और डेवलपमेंट का कारोबार होगा। और इसलिए दादी ने कहा कि ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कारोबार के लिए बाबा ने आपको नियुक्त किया। मैंने कहा मुझे तो मालूम नहीं है रिसर्च कैसे किया जाए। कहा नहीं, बाबा ने आपको नियुक्त किया है और आपको यहाँ पर इसका रिसर्च का कारोबार करना है। और दादी ने मुझे सीधा ही सवाल पूछा कि इस कमरे का नंबर 13 है, दुनिया के अंदर आप जानते हैं 13 नंबर, जरा आप सबको मालूम है, दुनिया में फॉरेन में तो होटल होती है ना, उसमें 12 है, बाद में 14-15 इस प्रकार से होता है, 13 नंबर नहीं होता है। तो मुझे भी दादी ने पूछा कि इस कमरे का नंबर चेंज करना है। देखो एक सूक्ष्म परीक्षाएं होती है, एक सूक्ष्म परीक्षा, हम बाबा के तरफ से दादी ने मेरी परीक्षा ले लिया। कहा आप क्या समझते हो? मैंने कहा 13 नंबर तो बहुत अच्छा है। कहा कैसे? मैंने कहा दादी मैंने सिख धर्म की स्थापना का कारोबार मैंने पढ़ा हुआ है और गुरु नानक देव जी जो थे वो पहले ग्रोसरी का व्यवहार करते थे और उसके अंदर करते करते गिनती करते करते 1, 2, 3, 4, 5, 12 उस प्रकार से 13 आया और 13-13 कर करके बाबा मैं 13 हूँ, बाबा मैं 13 हूँ, इस प्रकार से 13 के द्वारा, मैंने कहा दादी को कि 13 के द्वारा एक सिख धर्म की स्थापना हो सकती है, तो 13 का शब्द और अंक जो है वो कैसे अपशुकन का हो सकता है, ये तो बहुत अच्छा है। और विश्व परिवर्तन का कारोबार करना है तो ये 13 है, इसके द्वारा ही विश्व का परिवर्तन का कारोबार होगा। इस प्रकार से हमने वो परीक्षा में मैं पास हो गया। कहने का मतलब ये है कैसे मैनेजमेंट के अंदर बहुत सी परीक्षाएं आएंगी, सूक्ष्म परीक्षाएं आएंगी और उसके लिए आप अपनी बुद्धि को, बाबा ने एक मुरली में कहा है कि सबको सब बातें सीखने की जरूरत नहीं है, परंतु अपनी बुद्धि को इतनी तीक्ष्ण बनाइए, इतनी तीक्ष्ण बनाइए कि सामने कोई भी प्रकार की समस्या आए उस समस्या के समाधान के रूप में आप समाधान कर सकते हो। आप उस समय पर प्रश्न बनकर के नहीं रहो, आज क्या क्या हो गया, कहीं हमारे बातों में सामने परीक्षा आती है तो हम कहते हैं क्या करें क्या करें, प्रश्न बनकर के हम खड़े रह जाते हैं। इसके बदले में जो भी है निर्णय करने की शक्ति आपके अंदर योग के द्वारा जो आती है उसका प्रैक्टिकल टेस्ट होना ही चाहिए और होगा ही सही, और उस प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के अंदर सफलता प्राप्त करना ही होगा अगर भविष्य के श्रेष्ठ कारोबार के लिए हमको निमित्त बनना है तो। इसलिए ये मैनेजमेंट का 5th सब्जेक्ट है और वो 5th सब्जेक्ट जो है चारों के साथ, चारों का मिला जुला ज्ञान योग धारणा और सेवा का मिला जुला रिजल्ट जो है वो है ये मैनेजमेंट। तो इस प्रकार से उसके ऊपर भी आप सोचना। और आप तो सब हमने सुना हुआ है कि समर्पित भाई के रूप में सेवा केंद्र के रूप में रहने वाले हैं, तो आप सेवा केंद्र पर रहते रहते अच्छे रिश्ते कारोबार को आगे बढ़ाइए और अपने आप को लायक बना करके विश्व कारोबार के लिए लायक बना करके कारोबार कीजिए। तो इस प्रकार से आप सबके सामने आज मुझे क्लास कराने का जो चांस दिया बहनों ने सुबह सुबह आकर के, मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगा। मैंने कहा हमारे तो जूरिस्ट विंग की मीटिंग भी चलती है, तो कहा नहीं, हमने कहा कि 5 से 6 सवा से तो फिर यहाँ आते हुए मुझे ख्याल में आया कि 15 मिनट ज्यादा लूंगा, तो मैंने जागृति बहन को बोल दिया कि मैं 15 मिनट ज्यादा लूंगा। तो इस प्रकार से आप सबसे मिलने का सौभाग्य भी मिला और आप सबके सामने थोड़े अपने बाबा के ज्ञान के आधार पर बने हुए विचारों को प्रस्तुत करने का मौका मिला। उम्मीद है कि आप इस प्रकार से दोनों बातें, उपराम अवस्था की बातें और मैनेजमेंट की बाबा की परीक्षाएं जो भी है उस अंदर सफल बनो और सफलता के सितारे बनो। ओम शांति। अब 1 मिनट बाबा की याद में बैठ करके फिर हमारी उषा बनाएंगी, उसका क्लास होगा।